माना जा रहा है कि विश्व भर में ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा लोगों को फूड एलर्जी की समस्या है। न्यू साउथ वेल्स के फूड अथॉरिटी के अनुसार फूड एलर्जी अब ऑस्ट्रेलिया में 10 में से एक शिशु को और 100 में से दो वयस्कों को प्रभावित करती है। एलर्जी और एनाफिलेक्सिस से पीड़ित बच्चों को स्कूलों में भेजना कई माता पिता के लिए चिंता का विषय हो सकता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो ऑस्ट्रेलिया में नए आए हैं, जिन्हें सिस्टम और दिशा निर्देशों के बारे में पता नहीं है। शिक्षा और चाइल्ड केयर में एलर्जी वाले बच्चों की देखरेख का भार उनके माता पिता, स्कूलों और चिकित्सकों के बीच संचार पर निर्भर करता है। एलर्जी और एनाफिलेक्सिस ऑस्ट्रेलिया के सीईओ मरिया सैड का कहना है कि ऑस्ट्रेलियाई स्कूलों में एलर्जी की समस्या अच्छी तरह से प्रबंधित की जाती है और यह एक जानकार स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर को खोजने के साथ शुरू होता है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं।
When you're talking about allergic disease, you need to be under the care of a doctor with experience in allergy. It's critical that people find a doctor that they trust, understanding that they won't have all the answers because there is a lot that is still unknown about allergic disease. But finding someone that you trust and then taking their advice and continuing under their care is what we recommend.
एलर्जी या एनाफिलेक्सिस वाले बच्चों को स्कूल या चाइल्ड केयर में भेजते समय यह आवश्यक है कि माता पिता एक एक्शन प्लान के जरिए बच्चे की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करें। ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी एंड एलर्जी एक्शन प्लान एक चिकित्सा दस्तावेज है जो एलर्जी की प्रतिक्रिया को पहचानने और प्रबंधित करने के लिए स्पष्ट और साक्ष्य आधारित जानकारी प्रदान करता है और ये दस्तावेज डॉक्टर या नर्स द्वारा पूरा और हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।
There are a number of different action plans and they're all available free to download from the ASCIO website. The commonest action plan you'll probably hear about is often called the red action plan. So that's the action plan for anaphylaxis and that's to be provided if you've been diagnosed with a food allergy and prescribed an adrenaline injector. There's also a green action plan to be provided to children who haven't been prescribed adrenaline injector but are still at risk of an allergic reaction.
ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी एंड एलर्जी यानी ASCIA की वेबसाइट पर इन एक्शन प्लान को निशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है और इसके अनुवादित संस्करण भी उपलब्ध हैं। इस एक्शन प्लान की अवधि समाप्त नहीं होती है लेकिन इन्हें बार बार समीक्षा की आवश्यकता हो सकती है जिसे आपके डॉक्टर द्वारा तय किया जाना चाहिए।
Sometimes some schools request that the action plan is updated every year, but this is not actually necessary because for some children with some allergies, we might only review them every 18 months or every 2 years.
पिछले साल ऑस्ट्रेलिया ने स्कूलों और चाइल्ड केयर में एनाफिलेक्सिस की रोकथाम और प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभ्यास दिशा निर्देशन लॉन्च किए। मरिया सैड के अनुसार इन प्रमुख संदेशों में से एक है एलर्जी के प्रति जागरूक रहना। वे कहती हैं नट्स या अंडे जैसे कुछ खाद्य पदार्थों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाकर एक झूठी सुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है।
Banning does not work. We've got to have systems in place to help reduce risk within the class environment. And I'm not saying we're telling everyone to bring peanut or to bring sesame into the classroom.
नोविया चैन के बेटे ट्रिस्टन को कई खाद्य पदार्थों से एलर्जी है जैसे कि डेयरी उत्पाद, अंडा, मछली और नट्स। उनके लिए अपने बेटे को उसकी स्थिति के बारे में शिक्षित करना और कुछ दृढ़ नियम निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। नोविया चैन कहती हैं।
And I also tell Tristan, do not eat anything given from the others. If he want to try something he never had before, always bring it to me so I can check the ingredients, make sure they're nut-free, dairy-free and egg-free.
ट्रिस्टन के स्कूल की कक्षा में उसका एक्शन प्लान प्रदर्शित है जो शिक्षकों और अन्य साथियों को उसकी स्थिति के बारे में बताता है और इसी के चलते ये स्वाभाविक तौर से छात्रों को एलर्जी के बारे में जानने और खाने के बारे में जागरूक बना रहा है।
Luckily, food sharing is prohibited at school, and all students are told not to share their snacks or lunch with their peers.
मरिया सईद कहती हैं कि यह महत्वपूर्ण है कि माता-पिता और स्कूल के कर्मचारी एक साथ काम करें।
So educating the child with food allergy, educating their peers on how to look out for their friend that's got food allergy, communicating the risk of anaphylaxis, and then putting lots of strategies in place to help reduce the risk of anaphylaxis to that child, but importantly, to also know how to recognize an allergic reaction and what to do when it happens, because it will happen.
माता पिता को एक्शन प्लान के अनुसार दवा प्रदान करने की भी आवश्यकता होती है। स्कूलों में प्रत्येक एलर्जी वाले छात्र के लिए एक आपातकालीन किट होती है जिनमें उनका एक्शन प्लान और दवा शामिल होती है। दवा की तिथि समाप्ति पर ध्यान देना एक अच्छा कदम है क्योंकि यदि दवाएं समाप्त हो जाती हैं तो वह छात्र किसी भी प्रकार की स्कूली भ्रमण या यात्रा में शामिल नहीं हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया में आपको एड्रेनलिन इंजेक्टर्स, एपीपेन और एनापेन को प्राप्त करने के लिए डॉक्टर के नुस्खे की आवश्यकता नहीं होती है। डॉक्टर फ्रिथ कहती हैं कि इन इंजेक्टर्स को बिना नुस्खे के खरीदना महंगा हो सकता है, जिसके लिए लगभग 75 से 100 डॉलर का खर्च आ सकता है।
Most efficient way to get adrenaline injectors is to have a PBS authority prescription, and that will allow you to have two adrenaline injectors for around $40.
प्रारंभिक PBS यानी फार्मास्यूटिकल बेनिफिट स्कीम प्राधिकरण नुस्खा एक विशेषज्ञ द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए और उसके बाद नुस्खे आपके GP यानी सामान्य चिकित्सक द्वारा लिखे जा सकते हैं। डॉक्टर फ्रिथ अपने रोगियों को बैकअप के रूप में समाप्त हो चुके एड्रेनलिन इंजेक्टर को रखने के लिए प्रोत्साहित करती हैं क्योंकि पिछले साल देश में महामारी के कारण आपूर्ति की कमी देखी गई थी।
It is important that you've always got access to an in-date adrenaline injector, but I think adrenaline doesn't lose its potency completely, so it's often good to have it as a backup if it's expired. You can either practice using it on an orange or a water bottle just to get familiar with it, and you can dispose of it with your pharmacy.
एलर्जी वाले बच्चों को स्कूलों या चाइल्ड केयर भेजना माता-पिता के लिए चिंताजनक हो सकता है, लेकिन बच्चों सहित स्कूलों के साथ भी प्रभावी संचार स्थापित करना जरूरी है ताकि इस विषय में शिक्षित किया जा सके और जागरूकता फैलाई जा सके।